ಪದ ತನು ಜಾನ ನಿ ಬಹು ವಿಶೇಷಾತ್ಮ ಪೀಕೋ ಪತಿವರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥ ತನಯ ಆತ್ಮಕೋ ಪತಿವರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥ ತನಯ ಅಜನ್ಮಾ ಪೀಮಾನ್ ವಿಗತ ಭವರಾಗೋದ್ಭುತ ಗತಿ ಮಾಪೀಮಾನ್ ವಿಗತ ಭವರಾಗೋದ್ಭುತ ಗತಿ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ ವಿವಿಧನಯ ಕಲ್ಲೂಲ ವಿಮಲ ವಿವಿಧನಯ ಕಲ್ಲೂಲ ವಿಮಲ ಗ್ರಹ ಜ್ಞಾನಾಂಬೋಗಿ ಜಗತಿ ಜನತಾಂ ಪಯಸಿ ಜ್ಞಾನಾಂಬೋಗಿ ಜಗತಿ ಜನತಾಂ ಪಯಸಿ ಬುಧ ಜನ ಮರಾಲೈಹ ಪರಿಚಿತ ಬುಧ ಜನ ಮರಾಲೈಹ ಪರಿಚಿತ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ ತ್ರಿಭುವನ ಜಗೀತಾಂ ಶುಭತಾ ತ್ರಿಭುವನ ಜಗೀತಾಂ ಶುಭತಾ ಕುಮಾರಾವಸ್ಥಾಯಾಮಪಿ ನಿಜ ಬಲಾದೇನ ವಿಜಿತಾಮಪಿ ನಿಜ ಬಲಾದೇನ ವಿಜಿತಾ ಪುರನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಥಮ ಪದ ರಾಜ್ಯಾಯ ಸಜನ ಪುರನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಥಮ ಪದ ರಾಜ್ಯಾಯ ಸಜನ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥ ಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ ಪ್ರಥಮನ ಪರಾಶಿ ಗೋಹಾಕ ಪ್ರಥಮನ ಪರಾಶಿ ಗಿಸ ನಿರಾಕೇಷೋಬಂಧು ವಿದಿತ ಮಹಿಮಾಮಂಗಲಕರ ಬಂಧು ವಿದಿತ ಮಹಿಮಾಮಂಗಲಕರ ಶರಣ್ಯ ಸಾಧೂನಾಂ ಭವಭಯಭ್ರತಾಮೋತ್ತಮ ಗುಣೋ ಸಾಧೂನಾಂ ಭವಭಯಭ್ರತಾಮೋತ್ತಮ ಗುಣೋ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ ಮಹಾವೀರಾಸ್ತುಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗೇಂದುನಾಕೃತಂ ಯಾಪಕೇತ್ಸಂ ಯಾಚ್ಯಾಪಿ ಪಾಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿ ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿ ಧರ್ಮ ಬಡಾ ಹೇ ಕಿ ಕರ್ಮ ತೋ ಪಹಲೆ ಅಪನ್ ಯೇ ದೇಖ್ ಲೇ कि धर्म कैसे किसे और कर्म किसे कहते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। जो हमें उत्तम सुख में पहुंचा दे दे उसे धर्म कहते हैं। अहिंसा धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह भी धर्म है, क्षमा मार्दव आर्जव इत्यादि भाव धारण करना यह भी धर्म है, और हमारा जो स्वभाव है वह भी धर्म है। क्या समझ में आया इन सारी बातों से? धर्म हमारा अपना दायित्व है, हमारा अपना कर्तव्य है। अपना आत्मकल्याण करने का कर्तव्य भी हमारा धर्म है, और जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उसके प्रति जो कर्तव्य है वह भी हमारा धर्म है। प्राणी मात्र के प्रति उसके प्रति करुणा और दया रखना यह भी हमारा धर्म है। इस तरह अपन देखें कि धर्म का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। कर्म जो हम वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं या मन से करते हैं, एक कर्म वो हैं, एक कर्म वे हैं जो हम बांधते हैं, और एक कर्म वे हैं जिनका कि फल हम भोगते हैं। इसमें से यहाँ कर्म के मायने हैं जो कर्म हम करते हैं वर्तमान में, जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म, और जो हमारा कर्तव्य है वास्तव में वो है हमारा धर्म। इस तरह हम देखते हैं तो धर्म और कर्म दोनों एक ही चीज, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इतना अवश्य है कि धर्म का क्षेत्र व्यापक है, कर्म का क्षेत्र सीमित है। अपना कल्याण करना, सबका कल्याण करना, ये धर्म का क्षेत्र है, और कर्म में हम सिर्फ अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए जो कार्य करते हैं उसको कर्म कह देते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो कर्म भी वही श्रेष्ठ है जो कि धर्म से युक्त हो, और धर्म भी वही है जिसमें कि हम निरंतर अपना कर्तव्य करते हैं। इस तरह भैया दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अब अपन प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं। आप असल में कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं कि महाराज हमें मंदिर आना है, आपके प्रवचन भी सुनना है, लेकिन गृहस्थी के और काम भी हमारे जिम्मे हैं, तो आप बताओ कि हम पहले मंदिर आवें, आपके प्रवचन सुनें, या कि बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देवें, पहले क्या करें? सीधी सीधी बात, चाहे तो इतना घुमाओ फिराओ कि धर्म और कर्म में क्या बड़ा भारी है, यही मुश्किल है हमारे सामने। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें जो हमारा दायित्व तो हमने पहले स्वीकार किया है अपने परिवार के प्रति, तो हम पहले वह करें, वही हमारा धर्म है। उसके बाद फिर हमें अवकाश निकाल करके अपने आत्मकल्याण के लिए भी जो कार्य करना है वो भी करना चाहिए। इधर हम अगर सुबह से और अपने पूजा पाठ में लग जाएं और जो बच्चों का दायित्व हमारे ऊपर है, गृहस्थी का दायित्व है, वो पूरा ना करें, तो ऐसा धर्म हमें कोई सुख और शांति नहीं देगा, सिवाय आकुलता के कुछ नहीं होने वाला। और यदि हम वह कार्य करके और फिर अपने इस कार्य को करें तब हमें दोनों का आनंद मिलेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि संसार के काम करो, मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे निवृत्त होकर के फिर उसके बाद यह कार्य भी करना है। इस बात को हम ध्यान में रखें तो हमें दोनों चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति नहीं, तो हमने देखा है कि गृहस्थी में 23 घंटे तो सिवाय कलह और संकलेश से कुछ नहीं, और घंटे भर इतनी बढ़िया ठाट बाट से पूजा की, घर गए तो वही हिसाब किताब। और अगर घर की तरफ से आप निश्चिंत होकर हमने सबके लिए सब काम कर दिया, फिर उसके बाद हम अपना धर्म ध्यान भी कर रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि सब लोग और हेल्प करते हैं कि देखो ये तो दूना दूना काम कर रहे हैं, आप अपना अपना सब्जेक्ट भी पढ़ें और दूसरी चीज़ें भी पढ़ें तो कोई मना नहीं करेगा, और दूसरी दुनिया भर की चीज़ें पढ़ें और अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ें तो कान पकड़ा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। ऐसा ये भी है, यदि कोई व्यक्ति कोई नियम ले ले उससे मुक्त होने का क्या उपाय और प्रायश्चित है? उस नियम का निर्वाह नहीं कर पाने पर फिर जिससे वो नियम लिया है उसके चरणों में निवेदन कर लेना चाहिए कि भगवान यह नियम मैंने लिया लेकिन मेरे से ठीक ठीक निर्वाह नहीं होता, मैं व्यर्थ में अपने साथ और लोगों के साथ धोखा करूं, जब मेरे से वो ही नहीं रहा तो इससे अच्छा है कि मैं हाथ जोड़ लूं, मुझे कोई और छोटा मोटा नियम दे दो, और यह जो नियम मैंने लेकर के पूरा नहीं कर पाया इसके लिए मेरे अंदर पश्चाताप है, आप मुझे उस पश्चाताप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित दे दो, तो दोनों प्रक्रियाएं आसानी से सद जाएंगी। भैया ऐसा इसीलिए तो कहते हैं कि नियम लेने से पहले खूब अपने मन में विचार कर लेना चाहिए और अपनी शक्ति का विचार करके ही नियम लेना चाहिए। देने वाले का भी दायित्व है कि वो सामने वाले की शक्ति का विचार करके ही उसे नियम दे। देखो जितना नियम देने का श्रेय हमें मिलता है उतना ही नियम आप अगर उसे लेकर के नहीं निभाएंगे तो उसका जो लॉस है उसमें हिस्सेदारी हमारी भी मानी जाएगी, हम भी उसके लिए दोषी माने जाएंगे कि इन्होंने ऐसा कड़ा नियम क्यों दे दिया जो उसके निर्वाह नहीं हो सका और उसका कल्याण हो गया। इसलिए अपने यहाँ शक्ति का त्याग, जितनी शक्ति है उतना त्याग करें। शक्ति से अधिक त्याग कर लेने के बाद संकलेश करने में धर्म नहीं है। मुझे बताओ संकलेश में धर्म है या कि विशुद्धि में? नियम किसके लिए लिया था, संकलेश के लिए या कि विशुद्धि के लिए? विशुद्धि के लिए। तो उतना ही जितनी की अपनी सामर्थ्य है और धीरे धीरे करके लेंगे तो ज़्यादा आनंद भी आता है। एकदम हड़बड़ी में ले लेते हैं, आती तो है भावना, एकदम आती है भावना देख करके कि हम भी लेंगे, पर अपनी शक्ति विचार के। जैसे छोटा बेटा भी जो है बड़े भैया को देख करके अम्मा से कहता है कि माँ वो तो आपने उसके दूध में मलाई डाल करके भी हमारे में डालो, तो वो माँ क्या कहती, तेरे को मलाई क्या पचेगी, ये दूध भी नहीं पचेगा, थोड़ा पानी डाल देती हूँ तो पी ले। हैं, उसको पानी डला हुआ दे रही, क्या वो उस बच्चे का कल्याण नहीं चाहती? माँ चाहती है, लेकिन इसको जितना डाइजेस्ट होगा वो देना पड़ेगा और इसको जो मेहनत कर रहा है दिन भर उसके लिए जिस तरह देना है वो। इसी तरह गुरु के समीप जा करके निवेदन तो बड़े ही नियम का किया जाता है, लेकिन वे आपकी शक्ति विचार करके फिर उसके बाद ही दें, ऐसा नियम है। इसलिए लेने के बाद फिर अपन को विचार करना पड़े, इससे पहले बेहतर है कि हम लेने से पहले विचार कर लें। अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम, तीन की साक्षी अनिवार्य है। आत्मा की साक्षी, मैं स्वयं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे अपने आसपास के लोग उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं, जिस परिवार में मैं रहता हूं उसमें अगर रात्रि भोजन सारे लोग करते हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं रात्रि भोजन छोड़ने से पहले उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन कर लूं कि मैं रात्रि भोजन छोड़ूंगा। आप किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा, मेरा भाव आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं है, मेरी फैमिली में कोई इस चीज़ को लेकर के और संकलेश तो नहीं होने लगेगा। मैं उनसे भी कह दूं और ये भी कह दूं कि मेरे इस नियम के निर्वाह करने में आप सबकी मदद भी जरूरी है, मैं कभी भूल जाऊं धोखे से तो आप याद दिला देना कि आपका तो नियम था और आप भूल गए। तो पर सक्षियम, देवता सक्षियम, देव गुरु शास्त्र की साक्षी पूर्वक, ताकि कभी इसमें कोई त्रुटि हो जाए, दोष लग जाए, तो उनके चरणों में जाके निवेदन करके प्रायश्चित इत्यादि ले सकें। भैया प्रक्रिया तो बहुत सुव्यवस्थित आचार्य भगवंतों ने नियम लेने की दी है, उसी हिसाब से लेना चाहिए। फिर भी यदि अपन को कहीं कोई नियम कड़ा ले लिया है और निर्वाह नहीं हो रहा तो उसके लिए निवेदन करके छोटा नियम लेकर के और उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। आपने यही मेरे से पूछना चाहता है, ये क्या है, यदि किसी को क्या हो गया है, धा, क्या लिखा, छाला। वाह भैया हिंदी भी मजे की है, वो धा लग रहा है धा, और फिर बाद में लाकिया लाने आती मात्रा तो कहाँ से कहाँ चली गई। हिंदी के लिए ट्यूशन लगवाओ मेरे को। फिर भी समझ में तो आ गया, यदि किसी के छाला हो गया हो तो वो हार, हार लिखा उन्होंने, आहार नहीं लिखा, हार, हार दे सकता है कि नहीं, वो है तो यही कि आहार दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब सवाल ये है कि क्यों अपन ऐसा पूछ रहे हैं, तो आचार्यों ने लिखा है कि यदि आहार के समय और किसी को कोई ऐसा घाव हो जिससे कि रक्त बहता हुआ दिखाई पड़ जाए तो अंतराय है, तो अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति अपने शरीर में ना हो, घाव इत्यादि ऐसा ना हो जिससे कि रक्त स्राव हो रहा हो, रक्त बह रहा हो और वो बहता हुआ, अगर है भी तो उससे हम कोई कपड़ा पट्टी जो भी है वो बांध लेते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन दिखने में आ जाएगा तो अंतराय माना जाएगा। और ऐसा कोई रोग हो गया हो जो कि माने जिसको संक्रामक बोलते हैं, जो कि एक से दूसरे में फैल सकता है, तो ऐसे रोग वाले को भी आहार दान की प्रक्रिया से दूरी रहना चाहिए। ऐसे अवसर पर ही तो दिखा गया, अब जैसे सर्दी बहुत हो गई, बार 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 नाक आने की बाधा हो रही, बार बार पहुंचना पड़ता है, अब हम आहार में शामिल हो जाएंगे तो हमको भी अनिजी लगेगा और सामने वाले को भी अनिजी लगेगा, तो इससे बेहतर है कि दूर खड़े होकर, भले ही 16 कपड़े पहन के दूर खड़े हैं, अच्छे से देव सब लोग देव, बहुत अच्छा, हमारा ये ठीक हो जाएगा, फिर हम भी देंगे। ऐसे करते हैं। तो इसमें बड़े आराम से और धर्म ध्यान हो सकता है, कोई वो नहीं है। आप अभिषेक करने की संपूर्ण प्रक्रिया से हमें अवगत करा दें। ठीक है, किसी दिन, वैसे भैया जी कह तो रहे हैं कि सभी को पूजा और अभिषेक की प्रक्रिया एक बार थोड़े 5-7 दिन के लिए, तो उसी दौरान शायद आपने कैरी किया है कुछ, अभी डिसाइड फाइनल नहीं किया, पर मन है कि एक हफ्ते का ऐसा कुछ कर लिया जाए कि जिसमें और भैया जी के साथ में सब लोग बैठ करके और पूजा सीखें, फिर उस पर मैं जो पूजा में चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर एक छोटा लेक्चर दे दूँ, मतलब आपको उस पर बता दूँ, लेक्चर सब निकल गया वो है गड़बड़ हो गई, तो मैं उस पर आपको कुछ समझाऊँ। मैंने बड़ा साइंटिफिक है, आप आश्चर्य करेंगे कि पूजा की प्रक्रिया और अभिषेक दोनों के पीछे साइंस है और वो अपन को मालूम नहीं है। वो पैरासाइकोलॉजी की जो बहनें हैं तमिलनाडु में, उन्होंने उस पर प्रयोग किए और उन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं वो बड़े चमत्कृत करने वाले, तो उनको अपन बैठेंगे और चर्चा करेंगे। अभी तो मैं उसके डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, पर मन है कि शायद ये चीज़ संभव हो पाए। महाराज, सामायिक पाठ का प्रथम प्रतिक्रमण कर्म करने पर उसके आदि और अंत में आलोचना पाठ बोलकर फिर द्वितीय प्रत्याख्यान कर्म का पाठ करना चाहिए, ऐसा क्यों? भैया जैसी विधि लिखी है वैसी करना चाहिए, इसके बारे में हम विशेष नहीं जानते। वो सामायिक पाठ का प्रथम द्वितीय ऐसे करके 6 या 7 कितने हैं, 6 हैं तो वो दिए हुए हैं। अब उनको पूरा करना अनिवार्य है ऐसा भी नहीं है, जिसने बहुत व्रत नियम इत्यादि दिए हैं उसके लिए है, आलोचना भी करेगा प्रतिक्रमण भी करेगा, उसी में सामायिक एक ही में सब जोड़ दिया गया है वो, तो आप उसमें से जितना आपको आवश्यक लगे पूछ लें कि इतना हमें करना है तो उतना कर लें, और पूरा भी कर लें तो कोई हर्जा नहीं है। ये चीज़ें तो इसमें क्वेश्चन मिक्स कर दिए क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जीजा अक्षर का पहले हो चुका था, ये भी हो चुका। हाँ, मुझे रोज जो है वो थोड़ी सी आप मेहनत करवाते हैं, कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे। बेटी लोग, इसमें लिखा नहीं है, मैं अपने मन से उसमें जो लिखा है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ। बेटी लोग मुकुट सप्तमी का उपवास करती हैं तो क्या पानी पीना चाहिए कि नहीं? अरे वाह, अब बताओ पानी पी लिया तो फिर क्या मतलब हुआ? पानी पी करके करेंगे तो उसको अनुपवास बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी की शक्ति नहीं है तो अकेला पानी लेकर के भी कर लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं, और निर्जल करो तो सबसे बढ़िया चीज, उसमें थपथपाई जाएगी, निर्जल करेंगे अगर और पानी पी के करेंगे तो फिर जरा कान भी नहीं पकड़ा जाएगा लेकिन पीठ भी नहीं थपथपाई जाएगी। अगर पी लें तो क्या पाप लगेगा? पाप नहीं लगता, इतनी जल्दी थोड़ी लगता, बहुत देर में लगता है वो, बड़े बड़े हैं इतनी जल्दी पाप लग जाएगा क्या? हाँ, पर साहस करना चाहिए करने का। ईपी और भीपी के मायने क्या है? ईपी के मायने हैं संकट, विपत्ति, और भीपी के मायने हैं भय। ईपी 6 होती हैं, भीपी या भय 7 होते हैं। ईपी भीपी जापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ कर, थोड़ी सी हुई थी, समय पर नहीं हुई लेकिन, है ना, सब डिस्टर्ब हो गया है। भावना तो यही बातें हैं कि कभी कोई विपत्ति ना आए, विपत्ति कैसी वाली, संकट कैसा वाला, जैसे कि अतिवृष्टि हो जाए या कि अनावृष्टि हो, अकाल पड़ जाए, या कि टिड्डी दल आकर के और पूरी फसल को चौपट कर दे, या कि तोते आकर के पूरी फसल को चौपट कर दें, या कि चूहों को ऐसा रोग हो जाए, प्लेग फैल जाए, तो वो स्थिति, या कि अटैक हो जाए, कोई बाहरी शक्ति आकर के देश पर आक्रमण कर दे, तो ये संकट की स्थितियां हैं, तो ये 6 संकट की स्थितियां ना हो, ऐसी भावना अपन भाते हैं, इसको बोलते हैं ईपि, 6 प्रकार के संकट। एक और उसमें कहीं कहीं पर मिलता है कि 7 ईपि होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने कल बैठे विचार कर रहे थे कि जो फैजा है कॉलरा, वो भी इसमें भी गाँव से गाँव साफ हो जाता, हाँ पूरे के पूरे बहुत तेजी से फैलता है जब, तो कॉलरा वगैरह को भी अपन ईपी कह सकते हैं इस तरह की है। क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी में भी क्षति तो होती है, पर वो उसने अपने यहाँ शामिल नहीं किया उसने उसको, ठीक कह रहे हैं आप। अभी तो एक पढ़ रहा था मैं पैसिफिक ओशन के पास में, और हर साल उसमें से एक निश्चित टाइम पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होने से लावा अभी अभी आया उसमें, कि बहुत तेज़ी से अभी फिर से उसमें लावा बहना शुरू हुआ है, 2-5 हज़ार लोग उसको देखने के लिए रोज़ जा रहे हैं, वो उसमें से लावा निकलता है और मैग्मा से कन्वर्ट होकर लावा, और फिर वो बह करके समुद्र में मिल रहा है, एकदम रेड हॉट, पिघला हुआ। अभी भी ऐसा होता है, अपने यहाँ तो बहुत सेफ हैं अपन, अपने यहाँ कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, सब अमेरिका और उसके आसपास के एरिया में होती पैसिफिक ओशन के, अपने यहाँ तो बहुत सेफ हैं। अर्थक्वेक और ये जो भूकंप है वो अब थोड़े से अपने आने लगे, उसका कारण ये ही है कि बहुत अधिक जो बांध बनाए जा रहे हैं उनका प्रेशर पड़ता है, वो भी एक कारण है, और जो भावनाएं हैं क्योंकि अपनी गड़बड़ा रही हैं वो भी एक कारण है, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। शोभ के मायने क्या है, शोभ की परिभाषा दी हुई है, जब हमारे मन में किसी कहते ना दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं, जब अपने मन में किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा होती है और वो पूरी नहीं होती तो कैसा मन होता है, शुभ्ध हो जाता है, जैसे समुद्र शुभ्ध हो जाए तो उसमें वाइब्रेशन उठना शुरू होते हैं, ठीक इसी तरह हमारे चित्त में भी जो है और विभिन्न प्रकार की माने कहना चाहिए उद्वेग जिसको कहें, एक प्रकार का अनिजीनेस वो शुरू हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्षोभ होना। और कैसे एक्सप्लेन करूँ, अपने यहाँ तो मोह क्षोभ विहीनों परिणामों हूँ अपनों समो, जैन दर्शन के अनुसार तो क्षोभ के मायने हैं कषाय, चारित्र मोह के उदय में जो हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं उसको हम क्षोभ कहते हैं, हमारी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है और हमारे अंदर इस तरह वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं, उसको क्षोभ कहते हैं। विषाद, जब हमारे अपने किसी इष्ट वस्तु का वियोग होता है तब उसमें हम जो सौरव फील करते हैं वो विषाद कहलाता है। परगहन के समय जब आप रुकते हैं तो ये पता नहीं चलता कि किस व्यक्ति से या किस विधि से आपका परगहन हुआ, कल से सुधार लेंगे और क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पता लगना चाहिए, मतलब मैं वहाँ पर बोलूँगा कि ये जो दो कलश वाले हैं ना इनसे पड़गाया गया हूँ, बाकी लोग चुपचाप रहो इन्हीं से करवाऊँ, ऐसा बोलूँ मतलब यहाँ से कैसे करना ये बतावा। अब ये तो पता ही नहीं लगेगा कि किसके पास जाकर के खड़े हो गए और कौन सी वाली विधि है, ये सब बताने की चीज़ नहीं है, वो तो विधि तो हम लेते नहीं हैं, काय के विकार परेशान हो रहे हैं, दो कलश चार कलश पांच कलश हम कुछ नहीं देखते, हम तो आदमी देख लेते हैं कि भला आदमी है, चले इसके यहाँ पर या फिर हमसे थोड़ी जान पहचान रहती ना जिसकी, तो उसके हम पहले नंबर चले जाते हैं थोड़ा देख, लेकिन उल्टा देख नहीं आ रहा, जिसको जान पहचान रहती उसके देर लग रही है ना सबकी गैसिंग तो चलती रहती है कि ये यहाँ जाएंगे ये यहाँ जाएंगे, इस तरह का सब देखना पड़ता है, आशा की निवृत्ति भी करनी है, राग द्वेष का परिहार भी करना है, सबका ध्यान रखना पड़ता है और सारी चीज़ें, किसी को संकलेश भी ना हो कि किसी का आज ही चौका लगा और उसके यहाँ हो जाए और जिसका चार दिन से लगा उसके नहीं हो, तो बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है मन में, आ ही जाता कितने से कितने समझदार क्यों ना हो, क्षण भर को लगता है कि ये सब क्या है, पक्षपात लग रहा है। अब लेकिन क्या करें, उस सामने वाले का इतना पुण्य का उदय रहता है कि पैर रुक जाते हैं, अब क्या करेंगे, तो ऐसा कई बार हो जाता है, उसमें भी हमें बहुत सावधानी रखना पड़ती है कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन उस व्यक्ति का कई बार किसी व्यक्ति के यहाँ पर चाह करके जाना चाहें तो नहीं पहुँच पाएंगे और बीच में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी या कि उसके यहाँ पहुँचने के बाद गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती भैया, वो तो ये समझो कि जिसके यहाँ हो गया समझ लो वही विधि थी, उसी के यहाँ होना था, बात खत्म हो गई, हमारे यहाँ से क्यों आगे चले गए, हम भी दो कलश लिए थे, देवी एक नरियल लिए थे, अरे भैया इसमें क्या रखा हुआ है, आप वे नहीं हो सकते जो वे हैं, कैसे समझाएं आपको, ये तो अपना बिल्कुल वो है, जिस व्यक्ति से आपका परगहन हो क्या उसे पहले आगे बढ़कर फेरी लगाना चाहिए, वैसे ऐसा तो करते हैं कि कोई ना कोई एक व्यक्ति को वॉच कर लेते हैं कि ये व्यक्ति के पास जाते खड़े हो गए, वो सारी क्रिया करे, मतलब वो परगहन में भी आगे रहे, वो उधर जाकर के पाठ प्रक्षालन और पूजन में भी आगे रहे, और फिर कई बार तो उसी से हाथ भी धुलवाते हैं कि आप ही स्टार्ट करवाइए, आपके विश्वास से मैं आपके घर आया, मुझे भी तो विश्वास करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति ठीक है और ये व्यवस्थित रूप से करेंगे, बाकी सब तो उसमें शामिल हैं इस तरह, या कि घर का जो स्वामी है उसको आगे लाएं अपन इस तरह, और कोई इसमें वैसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जहाँ जैसा समझ में आता है वैसा कर लेते हैं भैया, पत्र पत्रिकाओं में पेपर में भगवान जी मुनि महाराजों के फोटो आलेख वगैरह रहते हैं, उनको पढ़ने के बाद उन्हें हम रद्दी में भेज देते हैं, उनकी थैली बनाकर बाजार में सामान डाल दिया जाता, उन्हें रास्ते में फेंक दिया जाता, वो थैली पाँव के नीचे आती है जैसे बड़ा आक्रंस होता है, और इस प्रकार शादी के कारणों में भी चिन्ह स्वस्थ बना रहता, उन्हें भी भेज दिया जाता अभी, अरे भैया बहुत बहुत लंबा था तो ये तो वेल नोन है, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट चीज है कि हम लोग जो जैसा कर रहे हैं उससे बड़ी अभिनय हो रही। और ये हमने आज से शुरू में भी कहा था कि अपन को थोड़ी देर को अच्छा लगता है कि हमारे महाराज का, हमारे भगवान का फोटो पेपर में छपे, फिर बाद में उस फोटो की क्या दुर्गति होती है ये भी हम अपने सामने देखते हैं, फिर भी हम सचेत नहीं हो पाते। अब इसके लिए किसको क्या कहें, कौन शुरुआत करे, जो शुरुआत करे वही बुद्धू। देखना, अगर हम ये कह दें कि हमारा फोटो पेपर में नहीं छप सकता तो फिर नहीं छपे, पेपर में एक दिन तक नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, हाँ कुछ प्रभावना नहीं हो रही, कोई पूछ तक नहीं रहा और जा तक नहीं रहा उनके पास में, अगर जाता होता तो पेपर में नहीं निकलता, फोटो तक नहीं निकला। और हमने एक बार जो है 400 रुपया की पत्रिका छपवाई तो लोगों के पत्र आने लगे, वहां पर मंडी ममोरा में 400 रुपये लगे थे कोई पत्रिका में, ऐसे ही एक कागज में निकल गई थी पत्रिका चतुर्मास की, नहीं तो कम से कम 10-15 हज़ार की चाहिए, जब तो बड़े महाराज कहलाएंगे कि अच्छी 4 कलर में निकले, लिखो प्रिंटर अगर हो तो लिखो पे प्रिंट हो, ऐसी चाहिए, फिर भले ही उसकी कितनी दुर्गति हो। अब उनके यहाँ चिट्ठियाँ आ गई कि आपके पास चतुर्मास के लायक पैसा नहीं हो तो हम भेज दें, इतने बड़े महाराज उनकी पत्रिका तक नहीं निकाली आपने, और हम ही ने कही थी उनसे कि आप मत निकालो, बड़े दुखी हुए वो, हमने की दुखी मत हो, हमने तो हमारे मन से कर रहे हैं ना, आप बाकी का सहन कर लो, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, ऐसे प्रयोग करने में सहन करना पड़ता बहुत। अगर अपन एक बार कोई तय कर ले तो उसको बड़ी मुश्किल है आज के समय में, तो मैंने तो कई बार सोचा कि ऐसा कि हमें करने के लिए मना कर दूं, लेकिन अगर जैन समाज के पूरे पत्र, ये जो पत्रिकाएं निकलती ना ये चतुर्मास चतुर्मास की, एक साल नहीं निकले तो 2-4 करोड़ रुपए बच जाएगा जैन समाज का, और अगर एक एक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए दे दो तो 100 आदमी को रोजगार मिल जाएगा जैनियों को, हमें बता रहा हूं आपको, करोड़ों रुपए की पत्रिकाएं ऐसी छिप जाती है 4 दिन के बाद, लेकिन क्या करें, एक पैटर्न बन गया, अगर नहीं छपवाते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलती बल्कि उल्टा जो है वो गड़बड़ी मानी जाती है। अब ऐसी स्थिति में भैया जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, काहे के कारण परेशान हो, आप हो हमें परेशान करो, इसलिए हमने अच्छे से पढ़ा था वो प्रश्न। अरे भैया ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं क्या, ये तो नहीं बताएंगे, शेषपाल पद्मावती वाला, वो ये वाला पढ़ देते हैं, छोटे महाराज सौगंध दिलाते हैं, अभी पूरा सुना पहले अभी पूरा नहीं है, वो मेरे ऊपर आएगी बात आखिरी में, देखना आप, मैंने पढ़ लिया उसको पहले, छोटे महाराज सौगंध दिलाते हैं, एकदम सही करते हैं, बहुत सही करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारे त्यागी मुनि महाराज को आहार देना ऐसा वैसा काम नहीं है, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं दे सकता, इससे जनता पर गलत नहीं बल्कि कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे मुनि महाराज को नॉन वेज खाने वाले के यहाँ भी आहार ले लेते हैं, इसलिए आप कुछ टाइम के लिए तो उन्हें सौगंध करवाए मेरे से कह रहे हैं, मुझे सजेशन दे रहे हैं वो कि देखो इतना बढ़िया महाराज कर रहे हैं और आप इतने बड़े हो गए और बुद्धू के बुद्धू रहे, अभी तक आपने किसी को नहीं करवाया। एक व्यक्ति तो हमसे कहने लगे झांसी में कि मैं महाराज जी क्या आपका नियम नहीं दिलवाने का नियम है क्या, हाँ क्योंकि मैं किसी को नियम ही नहीं दिलवाता, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मेरे हाथ पर ग्रास रखने वाला अवश्य भक्षण नहीं करेगा, ये मुझे विश्वास है, और आज तक का इतने वर्षों का मेरा अनुभव है, जिसने भी ग्रास हाथ पर रखा है उसने अपने जीवन में कोई ना कोई त्याग अवश्य किया है, इतने बड़े आचार्य महाराज के मुंह से मैंने कभी भी किसी को नियम लेने के लिए कहते नहीं सुना, वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 75 से तो मैंने उनको आहार देना शुरू किया था और 80 तक दिया, लेकिन मेरे से उन्होंने अगर एक भी बार ये पूछ लिया होता कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, मैं कहीं पर ऑफिस में बैठा दिखता, ये मैं कह रहा हूँ आपको, उन्होंने मेरे से नहीं पूछा, ये बात मुझे इम्प्रेस करती, उन्होंने मेरे विश्वास पर मुझे छोड़ दिया, इतना बड़ा विश्वास करना आसान काम नहीं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, अब इसके बाद बेईमानी, बेईमानी आपकी आपके हाथ में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम अपनी सेठ को छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं, ये बात ठीक है कि एक दसवीं व्यक्ति को पहले सोचना चाहिए कि वो किसको आहार दे रहा है, सप्त वचन का त्याग तो करने वाले से ही आहार लेंगे, ये तो बिल्कुल वेल नोन है, बहुत डिक्लेयर्ड है, इसमें तो कोई, लेकिन वहाँ हम किसी से पूछें कि तुम्हारे सप्त व्यसन का त्याग है, और हमें अगर अंडे का ध्यान आ जावे तो हमारा फर्ज है कि हमें बैठ जाना की अंतराय मानकर। इसलिए वहाँ तो इन चीज़ों के बारे में कह ही नहीं सकते, वहाँ इन चीज़ों का स्मरण भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं इन चीज़ आपकी बात को मैंने पढ़ के सुना दिया, महाराज नियम दिलवाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नियम नहीं दिलवाता हूँ, ना मैं आपके कहने से दिलवा पाऊँगा। ये बात अलग है कि नियम देना लेना सब अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे नेचर में नहीं। आप उसे अच्छा समझें या मुझे बुरा माने, मुझे दोनों मंजूर, मुझे उसमें कहीं कोई, आप बताइए जो इसमें लिखा हुआ, इसलिए तो हमने फिर बाद में पढ़ा उसको। हाँ, मैं ना कभी पूछा है और ना मैं पूछ पाऊँगा, पर मुझे इतना विश्वास है, झांसी के अंदर 50 बच्चों ने मेडिकल कॉलेज के सब ने मिलकर के मुझे पढ़ा लिया, दीक्षा दिवस था, उन्होंने 50 बच्चों ने पढ़ाया और खूब एंजॉय किया, बहुत मज़े से आहार दिया सब ने। और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर में चला गया तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि आपने उन बच्चों को क्या नियम दिलवाए जो ऐसे बच्चों से ले लिए, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल में पढ़ते हैं और क्या खाते होंगे क्या नहीं खाते। मैंने कहा मेरा तो काम ये है नहीं, वो जाने। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर के वापस अपने कमरे में लौट नहीं पाया, वो 50 बच्चे मेरे कमरे में बैठे थे। आज के लिए नियम दीजिएगा, आज आपने हमसे हाल ले लिया, हमने तो कभी ज़िंदगी में दिए नहीं, कोई सहारनपुर का था, कोई मेरठ का था, कोई कहीं का था, झांसी मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने कहा आज के लिए नियम क्या लेना, बोले जो भी आप कहेंगे, आज हम लोग मैच में नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, आज हम लोग जो है फल फूल खा के रह जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। हमने कहा ये सब तो ठीक है, पर अपन को सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोला, बस मैंने इतना कह दिया सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए, बस अपने को मेन ये है, और आज का ले लो कोई छोटा मोटा। आप आश्चर्य करेंगे कि 4 दिन के बाद एक बेटा उसमें से आया और उसने कहा कि महाराज आपने विश्वास करके मेरे से आहार ले लिया, जब तक मैंने आपको आहार नहीं दिया था तब तक मैंने अंडा भी खाया है और शराब भी पी, लेकिन जिस दिन से आपको आहार दिया है और आपने नहीं पूछा हमसे, तब जब जब भी वो दोनों चीज़ें सामने आती हैं तो मन कचोटता है और याद आ जाता है कि एक ग्रास आपने मेरे से विश्वास करके लिया था, आपके विश्वास को तो नहीं तोड़ पाऊँगा मैं, आपने मुझ पर विश्वास किया था कि मैं ठीक आदमी हूँ, तब से मैं नहीं खा पाया हूँ ना पीता हूँ, और अब आपके सामने सौगंध लेता हूँ कि ये चीज़ें जीवन भर नहीं करूँगा। बताइएगा गलत तो नहीं है, मेरी प्रक्रिया मेरा अपना सोच है, अब देखिए कब तक चलता है, मैं तो सोचता हूँ जीवन भर तक चल जाएगा शायद ये, पर मुझे इतना विश्वास, जिनको फ्रॉड करना है वो तो फ्रॉड कर ही सकते हैं, वो अपने साथ धोखा करेंगे, मेरे साथ क्या धोखा करेंगे। अगर वे मुझे आहार देकर के लिए शराब पियेंगे तो वे अपने साथ धोखा करेंगे, मेरे साथ क्या धोखा करेंगे। मेरे साथ तो उन्हें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और मैं किसी की 7 पीढ़ियाँ पूछने जाऊँ, ये मेरा काम नहीं है कि आप कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, मैं किस किस के बारे में हिसाब करूँ। 20 मिनट का काम है 25 मिनट का, और चुपचाप जो है डाला इधर और वापस आ गए, बाकी फिर स्वास्थ्य हैं, पराधीन मुरीवर की चर्या, बस 20 मिनट की पराधीनता है 25 मिनट की, और वो बड़ी कष्टप्रद है, अगर अच्छा सहनन होता तो 4-4 महीने और ठीक है, 1-8 बार कभी उठते तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आती। मुझे इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा लगने लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं क्यों नहीं नियम दिलवाता हूँ, पर क्या करें। अभी बच्चे आए थे दोपहर में, वो बोल रहे थे कि जब से जो है आपको आहार दिए हैं हमारे घर में तो बनना ही बंद हो गया आलू और प्याज, फादर ने कह दिया है कि जब तुम बच्चे लोग ने छोड़ दिया है तो हम भी छोड़ देते हैं, अब तो कोई लाते ही नहीं है घर में, बोले आहार आलू प्याज छूट। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये जो अपने आप होता है वो शायद मुझे लगता है कि बहुत आनंददायक है, इसलिए मैं उस प्रक्रिया को अपनाता हूँ। लेकिन कोई अगर नियम दे तो वो भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन मैं नियम नहीं देता हूँ, इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि चाहे जैसे व्यक्ति से हाल ले लो, मेरा भी यही है कि भला व्यक्ति ही आकर के देगा, इतनी हिम्मत तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी पर मैं आपकी बात को नहीं कर पाऊँगा, मतलब जो आपने मेरे से अपेक्षा रखी मैं भी नियम दिलाना शुरू करूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, क्षमा करें। जब अति विशिष्ट पुण्यात्मा जीव तीर्थंकर के जन्म लेने के पूर्व से 15 माह तक रत्नों की वर्षा होने पर कोई भी जीव दर्द नहीं बचता होगा, तब दान देने वाला ही नहीं होने पर दान का लाभ कैसे मिलता होगा। विनोबा ने लिखा कि अरे कितना अच्छा है कि किसी को भूख लगती है और तब मुझे आहार दान देने का मौका मिलता है ना, अगर किसी को भूख ही न लगे तो आहार दान कौन देगा। ऐसा ये लिख रहे हैं कि सारे जीव जब वहाँ पर और प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, सबके पास खूब संपत्ति हो जाएगी तो दान, आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या धन पैसे देना ही दान है क्या, क्या किसी को निश्चिंता देना दान नहीं है, अभय दान नहीं है, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, दान किया आए जी दिए। क्या ये कहना डोनेशन नहीं है? ये तो बिल्कुल परफेक्ट डोनेशन है। आप कितनी भी चीज़ें किसी को दे दें और निश्चिंता ना दें तो क्या होने वाला बताइए? तलवार उसके ऊपर लटकी है और सोने चांदी से लाद दिया उसके लिए और बढ़िया खाना पीना दे रहे हो, बिल्कुल ड्राई फ्रूट खिला रहे हो उसको, तलवार रगड़ी हुई है कि किसी भी दिन, तो क्या हो जाएगा? इससे कुछ लाभ होने वाला? अभय दान तो फिर भी रहता है, और भी दान के जितने भी भेद प्रभेद हैं वो अकेले लेन देन के नहीं हैं। किसी से दो शब्द आपने अच्छे कहे हैं उसको निश्चिंतता के, वह भी दान है भैया। औषधि से जितना लाभ नहीं होता उतना प्रेम से कह दो कि अच्छे हो जाओगे, कोई बात नहीं है, सिर पे हाथ फेर दो आधी तबीयत ठीक हो जाती। कोई साइंस वाइंस में नहीं लिखा होगा ये कि प्रेम से हाथ फेरने पर आधी तबीयत ठीक हो जाती, लेकिन हो जाती। ये औषधि दान नहीं कहलाएगा क्या? क्या सिर्फ अकेली औषधि देने पर ही औषधि दान होगा? अगर आप ऐसा देखें तो ये सारे दान हमेशा चलते रहते हैं। ये पैसे वैसे की चीज़ें जो है वो सबके पास रहती हैं, तो कोई किसको काहे को देगा। धर्म क्या होता है ये अपन समझ चुके हैं, और जिस तरह नमोकार महामंत्र किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं, उसी तरह कोई भी घरेलू कार्य करते हुए हम भक्तांबर या आलोचना पाठ बोल सकते हैं। भक्तांबर नहीं बोल रहे, भक्तांबर के लिए तो मुख शुद्धि तो होनी चाहिए, क्योंकि वो मंत्र की तरह ही है और भगवान की स्तुति है, तो कम से कम मुख शुद्धि पूर्वक। बाकी ग्रह कार्य करते समय कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो अम्मा लोग वो पीसती थी, आटा पीसती थी, तो बहुत सारे भजन और बहुत सारी विनती प्रभुपद पावन की बोलते रहते थे ऐसे उसमें, वो नहीं है। पर मुख्य चीज़ क्या है कि मुख में कोई चीज़ होनी नहीं थी, अशुद्ध नहीं होना चाहिए मुख जिससे हम बोल रहे हैं। बाकी और नमोकार के लिए तो ऐसा है कि आप पवित्र अपवित्र वा चतो देव चतो विवा ध्यायत पंचम ध्यायत, बोलना नहीं लिखा, स्मरित उच्चरित नहीं लिखा, स्मरित ध्यायत, स्मरण कर सकते ध्यान कर सकते किसी भी अवस्था में, लेकिन जब बोलना हो पाठ करना हो तो फिर मुख सिद्धि होना अनिवार्य। रात्रि में केवल अन्न ही क्यों नहीं खाते हैं बल्कि सब चीज़ें क्यों खाते हैं, अब ये आप ही बताओ। वैसे तो लिखा यही है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, खाद्य स्वाद लेह और पेय, अपन तो एक भी नहीं कर पाते हैं। देखो खाद्य का मतलब है जो चबा के खाई जाए सॉलिड, और सेमी लिक्विड जो चाट के खाई जाती लेह, और पेय लिक्विड और जो जिससे कि जायका बनता है मुँह का, ऐसे पेस्ट वाली चीज़ें जो है सौंफ सुपारी वगैरह वो सब कहलाती हैं स्वाद। ये चार प्रकार का भोजन है, कौन सा छूटा अपना? कोई नहीं छूटा। खाद्य में भी दो वैरायटी हो गई, खाद्य में चबा के खाने वाली एक अन्य की चीज़ है और एक दूसरी सिंघाड़े की बना ली, सिंघाड़ पाक सिंघाड़े के सेव, इतने आइटम बनते हैं ढेर सारे और पूरा पेट भर के खा लेते हैं, अकेला दाल रोटी सब्जी नहीं खाई, तो ये एक तरह से बेईमानी है। और तो बेईमानी करने का ढंग है, लेकिन भैया कम से कम एक प्रकार के भोजन का त्याग तो करना ही चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि एक प्रकार का भोजन रख लिया जाए चार में से तो भी काम चल सकते, बस दूध पानी रस ये ले लेंगे हम, बहुत ज़रूरत पड़ने पर कोई ऐसा मर नहीं जाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे तो, इतना भी अपन निर्णय ले लें तो बहुत आसानी से कर सकता और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर करते हैं लोग, बन गया है पैटर्न, वो इसलिए बन गया, एक चीज़ और है, ऐसा नहीं समझना कि जिन लोगों ने अन्न छोड़ा है उनने कोई कुछ किया नहीं है, उनने भी बहुत किया है। क्या होता है, दाल रोटी सब्जी वगैरह बनाने में जितना आरंभ होता है, जितनी हिंसा होती है, वो उसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है कि हमने कोई चीज़ पहले से बनी बनाई रखी थी रात में खाने लायक और उसको चुपचाप 5 मिनट में निकाला और खा लिया, राजगीर रखा था तो राजगीर में दूध डाला शक्कर डाली और खा लिया इस तरह से, तो वो उसमें कम आरंभ प्रारंभ है, इसलिए शायद लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया होगा कि दाल रोटी सब्जी बना करके खाने में और ज़्यादा हिंसा होती है वनस्पति और दूसरी चीज़ें, पर फिर भी वो भी छोड़ सकें तो बहुत अच्छा, उससे भी अपना काम करें। मेरा प्रश्न ये कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निश्चय ही बोलते हैं, प्रवेश करते हैं, ये क्यों बोला जाए? इसके तीन अर्थ हैं। निश्चय ही एक प्रकार की सूचना है अपने प्रवेश की, पहली चीज़। हाँ, कोई जो अदृश्य हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उनको भी हम सूचना देते हैं कि हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रवेश करते समय अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा याचना कर रहे हैं, तो पानी जगह बढ़िया तो नज़र मत लगाओ भाई, चलिए नज़र आसान तो मैं ये कह रहा था कि दूसरे नंबर पर हम क्षमा याचना करते हैं, निस्सही का ये है, और निस्सही जो है वो पुण्य स्थल में प्रवेश के अर्थ में भी, मैं पुण्य के क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ पाप को छोड़कर, निस्सही का एक अर्थ ये भी है। तो इस तरह तीन अर्थ हो गए, अपने प्रवेश की सूचना देना और प्रवेश में होने वाली दूसरे को होने वाली बाधा के लिए पहले से क्षमा याचना कर लेना, और पुण्य स्थल में प्रवेश कर रहा हूँ ऐसी मानसिकता बन जाती है, निस्सही निस्सही निस्सही, ऐसा कहते ही ऐसा लगने लगता है कि एक विशेष वातावरण में प्रवेश कर रहा हूँ और मेरे प्रवेश करने से किसी को तकलीफ हो तो मैं क्षमा भाव से भरा हुआ हूँ और इंडिकेशन दे रहा हूँ कि मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इस तरह ये तीन इस तरह है। मंदिर से निकलते सब के समय बोलें तो ठीक है, आवश्यक नहीं है, वो हम लोगों के लिए आवश्यक है। मुनि महाराज जब किसी गुफा इत्यादि में बैठ के ध्यान करते हैं तो जाते समय पूछ करके, निस्सही निस्सही वहाँ पूछना पड़ेगा वहाँ के देवों से, और बाद में थैंक्स देना पड़ता है, असही 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 हम इतनी देर यहाँ रहे, आपको कोई असुविधा हुई हो तो एक्सक्यूज और थैंक्स, हम जा रहे हैं, इंडिकेशन है ये इस बात का। तो वो असही असही कहना पड़ता है वो निर्जन स्थान पर, ऊपर ये तो निर्जन स्थान है ही, इसमें तो सब लोग बैठे हुए हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आवश्यक नहीं है वो असही असही बोलना। वैसे आपका पूछना ठीक है, जब प्रवेश करते हैं तो निस्सही, और जब उस निर्जन स्थान से बाहर निकलते हैं तब असही असही, वो इसके लिए है कि हम यहाँ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद और हम जा रहे हैं, ये इंडिकेशन है वापस जाने का, वो ठीक असही बोलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि सभी लोग कहते हैं जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो पूजा में चावल साबुत चढ़ाना चाहिए, और जब हम गीली सामग्री में पूजा करते हैं तो वो चावल टूट जाते हैं, हम वही चावल टूटे चढ़ाते हैं तो क्या हमको पाप नहीं लगेगा क्या? अब देखो सत्य अनुष्ठान कहलाता है, जितना सत्य है उतना हमें करना चाहिए। हमारी भावना तो साबुत चावल चढ़ाने की है, लेकिन उसको धोने की प्रक्रिया सब लोग ठीक से नहीं कर पाते। एक्चुअली जिस तरह अपन धोते हैं चावल धोने की वो प्रक्रिया नहीं है। मुझे एक पंडित जी थे उस समय, तो उन्होंने मुझे द्रव धोना सिखाया। मैंने एक दिन उनके सामने धोई तो मेरे हाथ से वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा देर तक उसमें पानी डाल देंगे और ज़रा सा हाथ लगाएंगे तो सब टूट जाएंगे। उसमें तो ज़रा सा मैंने उसकी तो टेक्निक है वो, और एक मलमल का कपड़ा होता है, जिस मलमल के कपड़े में और फिर जल्दी से उसमें पानी डाल करके अलग करके फिर उस मलमल के कपड़े से उसको रगड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर पानी डाल करके तब फिर एकदम उज्ज्वल चावल और अखंड पूरे के पूरे वो गल नहीं पाते हैं। तब ये अखंड चावल बनाने की प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है, गीले भी हो जाएंगे और अखंड भी रह जाएंगे, पर ऐसा हमेशा संभव नहीं है। अपन कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, फिर भी हम जब जब हम सावधानी रखें तो वे अखंड भी बने रह सकते हैं, सावधानी की आवश्यकता है इसमें। और अगर टूट जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, उनको अपन उसी समय टूट जाते हैं, उसमें कितने ही सावधानी रखें अपन वो टूट ही जाते हैं। तो फिर उसमें से भी अपन ऐसा करें कि थोड़ा सा पहले कुछ उसमें से जो साबुत रह गए हैं उनको चुन लें और उनको अलग रख लें। देखिए ये सब तो बहुत मन की चीज़ें हैं, हाँ वो संभव नहीं है, और अगर ऐसा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, पर उसमें ऐसा दोष नहीं लगेगा जैसा आप कह रहे हैं कि कोई पाप लगेगा, बस सावधानी कर रखें। और भी हैं क्वेश्चन या पूरे हो गए? क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हिंदी तो वैसे मैं पढ़ा हूँ पर वो समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, ये शायद और किसी भाषा में लिखा है, देख लेंगे। अरे भैया आपकी भाषा ही है, आप पढ़ो आपकी भाषा, आप ही पढ़ो भैया हमारे समझ में नहीं आया, सही नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप? ये लोग बाद में या तो पहले मुनि रहे होंगे और या फिर जो बाद में मुनि बने ये सेम के हैं, ऐसे क्या हुआ एक बार कि बीरबल से पूछा अकबर ने, आप सुनाते ना उसको है ना, सुनाते हैं अब मैं तो भूल जाऊंगा अगर तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उन्होंने एक बार कहा था भैया जी ने सुनाया था, कैसा है वो अकबर ने शायद बीरबल से पूछा कि आपके
हथेली पर बाल क्यों नहीं है, है ना? तो बीरबल ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप जो बहुत दान देते हैं लोगों को, इसलिए दान देते देते आपकी हथेली में बाल गायब हो गए। तो बोले और तुम्हारी हथेली में? बोले हमारी हथेली में तो आपसे खूब दान हमें मिलता है, तो हमारी लेते लेते अलग हो गए। और बोले बाकी लोगों के? बोले वो हाथ ही मलते रह गए, इसलिए उनकी हाथ मलते रहे, वो कामें मिले ही नहीं कुछ भी, ऐसे ही होता है ना। तो महाराज का ये कहना है कि जो लोग मतलब मेरे ख्याल से इसको कोई अपन क्या समाधान ढूंढ सकते हैं, सिर पर कम बाल या ज़्यादा बाल होना कोई, ये तो बहुत कहना कि साइंस का है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर इनके अगर अपन दूसरे अर्थ लें तो जिस व्यक्ति को बहुत अधिक चिंता या बहुत अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर, उसका बोझ उसके ऊपर होता है, उसको भी देखने में आया है कि न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं मिलने की वजह से भी ये होता। तो महाराज तो हंसी हंसी में कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सोने चांदी के काम करने वाले लोग हैं हीरे जवाहरात के, उनके जो है सिर पर कमती बाल क्यों हैं। तो हमने उसका जवाब भी यही दे दिया, या तो वो हीरे जवाहरात का काम करने से पहले और मुनि महाराज रहे होंगे, केश लॉन्च की आदत रही होगी उनकी, या फिर जो है आप जल्दी से उनको छोड़ छाड़ के केश लॉन्च करना चाहिए। ये क्या चीज़ है? अल्पायु कितनी उम्र तक होती है, मतलब? अच्छा, वैसे तो अपने यहाँ पर अल्पायु वो कहलाते हैं जिनका कि अंतर मुहूर्त में ही मरण हो जाता है, वास्तव में तो वो है अल्पायु, उसको कहें। हाँ, ये जितने भी लब्धि पर्याप्त तक मनुष्य होते हैं ना, समूल संजन्म वाले, वो सब अल्पायु वाले कहलाते हैं, उसको अल्पायु माने। हाँ, वो अपन ने फिर एक बना लिया कि 100 साल तक जी गए तो दीर्घायु, फिर 50 से 60 के बीच में जिए तो मध्यम आयु, और कोई 40 साल में ही मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए या बाई दबे हार्ट फेल हो जाए, तो अपन कहते भैया बहुत अल्प आयु रही, थोड़े ही समय में मर गए। पर जैन आगम के अनुसार तो जो अंतर मुहूर्त की आयु लेके आते हैं वो अत्यंत अल्प आयु कहलाती, जघन आयु है वो अंतर मुहूर्त की। कितने चौके लगाकर आहार की व्यवस्था हो तो ऐसा नियम, अच्छा तो ऐसा नियम हो सकता है, संख्या कम हो तो पता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जैसे ऐसा भी नियम कर सकते हैं कि हम 10 घर छोड़ करके 11वें में जाएंगे, 5 छोड़ करके 6वें में जाएंगे, ये है नियम का। मैं अपने दाएं तरफ जाऊंगा आज तो अपने दाएं तरफ, जिस तरफ अंजलि ली है उसी दिशा में मुड़ जाऊंगा, वहाँ जो चौके होंगे वहीं जाऊंगा, या मैं आज अपने बाएं तरफ जाऊंगा और दाएं तरफ जाऊंगा तो एक चौका छोड़ के दूसरे चौके में चला जाऊंगा, इस तरह तो विधि ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं ली जाती है कि जब 10 चौके लगेंगे तो फिर मैं आहार के लिए उठूंगा, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से ये क्या पूछना चाह रहे हैं, है? जिन्हें पूछा इसी तरह का ऐसा नियम काय को लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कितने हैं, तो ऐसा तो ले लेंगे कि हम 4 छोड़ के 5वें में जाएंगे, या कि हाँ, तो वो फिर आपका उस दिन का आलाप हो गया। जैसे आचार्य श्री नैना, उसने कुंडलपुर में थे, एक IAS ऑफिसर बनने वाला था, वो आया, उसकी बहुत मन थी कि आचार्य श्री को आहार दें, तो दे नहीं पाया वो, और आचार्य श्री से उसने कहा कि महाराज इस बार आए और आपका आहार ही हमारे यहाँ नहीं हो पाया और हमारे जाने का समय आ गया, ऐसा कह दिया उसने। तो आचार्य श्री ने दूसरे दिन यही नियम ले लिया कि वो जहाँ खड़ा होगा वहाँ चले जाऊँगा। उस दिन सुबह सुबह उसको घर से खबर आ गई कि तुम्हारा कोई उसका एडमिशन कार्ड वगैरह पे क्या था, वो साइन वाइन होना है, उसके लिए तो आना बहुत ज़रूरी है शाम तक। तो वो सुबह 8 बजे वाली गाड़ी से बैठ करके उस दिन चले गया, और आचार्य श्री तो निकले कि वो जहाँ खड़ा होगा, तो आचार्य श्री पूरे चौकों के सामने से और निकल करके 2 बार, और फिर बाद में आ करके वापस बैठ गए। उस दिन आहार नहीं हुआ, बाद में हंसी हंसी में भैया वृत्ति के समय उन्होंने कह दिया कि अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मिला ही नहीं, अरे महाराज वो तो चले गए सुबह सुबह चले गए। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार व्यक्ति विशेष कर लेने कठिन है उसमें, तो मैं